नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इसके रूप कितने हैं। यदि मैं अनुभव भी हूं तो सभी अनुभव मेरे ही रूप है, और मैं अनुभव करता हूं तो मेरा कोई रूप नहीं है। यदि आपने अहम को समझ लिया है कि अहम एक वृत्ति है, तो बहुत आसान हो जाता है ये समझना कि मेरे कितने रूप हैं। मेरा कोई रूप नहीं है, लेकिन सारे रूप मैं ही हूँ। यदि आपने मैं को जो है अनुभवकर्ता के आसन पर बिठा दिया है, तो आप देखेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जगत हूँ, मैं ही सारे जीव हूँ, मैं सारे मनुष्य हूँ, सारे चर अचर प्राणी जीवित मृत हर चीज मैं हूँ, क्योंकि मैं अस्तित्व हूँ। और मैं वो भी हूँ जिसका कोई रूप नहीं है, जैसा कि हमने पिछले सभा में चर्चा की थी। न रूप है, न रंग है, न माप है, न भार है, न ठंडा है, न गर्म है, न इसको आप तोड़ सकते हैं, न जोड़ सकते हैं, दोनों है, तो ऐसा कैसे संभव है? आप कहेंगे जो चित्त जो है इसको दो में विभाजित करके ही देख सकता है। या तो इस तरफ देखेगा अंदर की तरफ, तो उसको कोई रूप रंग नहीं दिखेगा, मैं क्या हूँ पता नहीं चलेगा, कभी शून्यता दिखेगी उसको। उस तरफ देखेगा वो अनुभव की तरफ, तो पता चलेगा कि हर वस्तु, हर अनुभव में हूँ, सारा जगत में हूँ, सारा ब्रह्मांड में हूँ। तो चित्त जो है फंस जाता है एक तरह के भ्रम में, उसको समझ में नहीं आता कि क्या हूँ फिर मैं, ये हूँ या वो हूँ। तो जो अनुभव करता है साक्षी आत्मन, वो उसको द्वैत के हिसाब से नहीं देख सकते, दो के हिसाब से नहीं देख सकते, वो एक है, अद्वैत है, क्योंकि एक ही है। तो जो जिसका रूप नहीं है वो भी वही होगा, और जो अस्तित्व है, जो आपका अनुभव सारे हैं, जो आपने देखे तीन तरह के अनुभव आपको हो रहे हैं, वस्तुओं का अनुभव, शरीर का अनुभव और मन का अनुभव, ये सारे अनुभव भी मैं ही हूँ। तो बड़ी विचित्र सी बात है कि अभी भी मैंने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ। अभी मैंने अपना राग बदल दिया, मैं 5 मिनट भी नहीं हुए मैं कहता हूँ कि अब मैं शरीर भी हूँ, मैं मन भी हूँ। बड़ी विचित्र सी बात है। तो सच क्या है फिर, सत्य क्या है? सत्य निर्भर करता है कि आपने अहम को कहाँ रखा है। यदि शरीर पर रखा है तो मैं शरीर हूँ, आप शरीर के साथ जुड़ते हैं तो मैं कहते हैं मैं शरीर हूँ तो शरीर हूँ, कहते हैं कि मैं मन हूँ तो मन हूँ, फिर शरीर नहीं हो सकता। यदि आपने कह दिया मैं शरीर हूँ तो मन नहीं हो सकता, वो शरीर की गतिविधि आप मानेंगे, उसको कोई गतिविधि, कोई क्रिया शरीर में चल रही है मन, और उसको भूल जाएंगे। लेकिन यदि आप कहते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो आप सब कुछ हो सकते हैं, तो फिर शरीर भी हो सकते हैं, क्योंकि अनुभव अनुभव करता ही की है, उनमें कोई फासला नहीं है, उनमें कोई दूरी भी नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं है। आप देखने जाएंगे अनुभव करता और अनुभव को, तो अनुभव क्रिया मात्र मिलेगी, ये अद्वैत क्रिया है, उसमें कोई भेद नहीं है। हर अनुभव को अनुभव करता अनुभव क्रिया के रूप में देख रहा है, हर अनुभव अनुभव क्रिया के रूप में अनुभव करता दिखाई देता है। तो दोनों में आप अंतर नहीं बता पाएंगे यदि आप प्रत्यक्ष देखने जाएंगे तो। तो इसीलिए मैं वो भी हूँ जिसका कोई रूप रंग नहीं है, मैं वो भी हूँ जो कि अनुभव है। अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आप या तो कह सकते हैं कि मैं एक वस्तु हूँ या एक मानसिक वस्तु हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं सब कुछ हूँ। बीच वाली जो बात है कि मैं एक हूँ और दूसरा नहीं हूँ, ये कहना थोड़ा असत्य होगा। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि ये कहना कि मैं सब कुछ हूँ सत्य है, ये कहना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ सत्य है, ये कहना कि मैं एक वस्तु हूँ दूसरी नहीं हूँ वो असत्य है। यहाँ पे समस्या आती है। यदि आप कहते हैं मैं शरीर हूँ और बाकी वस्तुएं नहीं हूँ, तो आप समस्या में पड़ जाएंगे, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। यदि आप ये कहते हैं कि मैं मन हूँ, तो आप मन ही बने रहेंगे, आप कुछ और नहीं बन पाएंगे, आप कभी अनुभवकर्ता नहीं बन पाएंगे, यदि आपने ये मान्यता मन में डाल दी है, जो कि ठीक है। मान्यताओं का कोई मोल नहीं होता, जितनी चाहे बना सकते हैं बैठे बैठे। जो सत्य की खोज कर रहे हैं, जो सत्य के पीछे है, जो अध्यात्म के शिष्य हैं, उनको प्रमाण की आवश्यकता होती है। बिना प्रमाण के कुछ भी मानना मूर्खता होती है। प्रमाण आपके सामने है, उसके बाद जो मानना है मानना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप समाज में रहते हैं तो आपको शरीर, आपको मानना ही पड़ेगा कि अहम शरीर का हिस्सा है, मैं शरीर हूँ मानना पड़ेगा, क्योंकि समाज जो है वो शरीरों का समूह है। मानना ही पड़ेगा कि मैं अहंकार हूँ, मैं मन भी हूँ, क्योंकि दूसरे लोग आपको एक अहंकार के रूप में ही देखते हैं, वो आपको आत्मन के रूप में नहीं देखते हैं, उनमें इतना ज्ञान नहीं होता कि आप किसी और रूप में देख पाए। यदि आपको ज्ञान हो गया तो फिर आप हर अनुभव को अनुभवकर्ता के रूप में देखेंगे। कह सकते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ एक है, वो एक मैं हूँ। तो इसमें सारी अवधारणाएं आ जाएंगी, आपकी जो जन्म लेने के पहले था वो भी मैं हूँ, जो मरने के बाद रहूँगा वो भी मैं रहूँगा, जो अभी हूँ वो भी मैं हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं हूँ। यदि आपका अहम आत्मन पर स्थित है, उसकी स्थिति अपने अहम को आत्मन से जोड़ दिया है, तो ये कहना संभव हो जाता है। आपको आत्म परिचय हो गया है तो ये आपके लिए सत्य होगा, नहीं तो आप एक या दूसरे अनुभव के साथ जुड़ जाएंगे और कहेंगे कि मैं ये हूँ और वो नहीं हूँ, मैं ऐसा ऐसा हूँ वैसा वैसा नहीं। आप फिर उस चित्त वृत्ति में पड़ गए, चित्त ने भेद कर रखे हैं अपना जीवन चलाने के लिए, उसको करने पड़ते हैं भेद, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या हूँ, किसको बचाना है, किसको खिलाना है, किसकी रक्षा करनी है, किसको मारना है, चित्त की समझ में नहीं आएगा। तो उसने अपने संबंध जो है देह के साथ, शरीर के साथ बना रखे हैं या मन के साथ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। यदि सभी कुछ मैं हूँ तो सारी पसंदें मेरी हैं, सारी नापसंदें भी मेरी हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चित्त के लिए जीवित रहना। तो उसने अपने जो है अपने खुद को जोड़ रखा है मन के साथ, जो मन में होता है वो खुद का मान लेता है, स्वयं का मान लेता है, मैं हूँ मान लेता है, और फिर संसार में लीन हो जाता है, खो जाता है वो, यहाँ पे उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही ये ज्ञान होता है कि या तो मैं सब कुछ हूँ या तो कुछ भी नहीं हूँ, तो आपकी मुक्ति हो जाती है संसार से, यहीं के यहीं इसी पल मुक्ति हो जाती है। मुक्ति कभी भविष्य में नहीं होगी, मुक्ति कभी भूतकाल में नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। जो नित्य है, जो वर्तमान है, जो समय के परे है, वह हमेशा मुक्त है, किसी बंधन में कभी था ही नहीं। ये सिर्फ एक भ्रांति थी आपकी कि मैं इस बंधन में हूँ, मैं उस बंधन में हूँ, क्योंकि आपने खुद को जो है स्वयं को, मैं को शरीर मान रखा था या मन मान रखा था। शरीर बंधन में है, बात सही है। तो यदि जब तक आप कहेंगे कि मैं शरीर हूँ, तब तक बंधन में ही रहेंगे, तब तक आपकी जन्म मृत्यु होती रहेगी, तब तक आप इस संसार के नियमों से बंधे रहेंगे, दुख सुख आपको होते रहेंगे क्योंकि मन से बंधे हैं। आपकी आपका पसंद नापसंद होती रहेगी, आपकी आपको आपके जो मन में जो सकारात्मक नकारात्मक विचार है वो चलते रहेंगे, क्योंकि आपके आपका जुड़ाव है उससे। तो सुख दुख तब तक रहेगा जब तक आपका अहंकार कहता है कि मैं ये हूँ, मैं मन हूँ या शरीर हूँ, तब तक आप काल चक्र में, संसार के चक्र में तब तक बंधे रहेंगे, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तब आप ये सोचते रहेंगे भविष्य में कभी मुक्ति होगी, भविष्य में कभी ज्ञान होगा, या मैं जन्म लेने से पहले मुक्त था, जन्म के लेने के बाद मैं बंधन में पड़ गया हूँ, जन्म ही मेरे दुखों का कारण है, मन ही मेरे दुखों का कारण है। बहुत से लोगों के लिए मन बड़ा दुखदायी होता है, सारे के सारे दुख मन से उत्पन्न होते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, मन को कैसे वश में करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ देखें कि मैं मन नहीं हूँ, कोई काम हो गया, मैं वो हूँ जो मन का साक्षी हूँ। यदि मैं मन का साक्षी हूँ, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है, न सुख है न दुख है, न आता हूँ न जाता हूँ, न मेरा जन्म हुआ, न पहले मैं था भूतकाल में, न भविष्य में कभी मुक्ति होगी मेरी, मैं अभी हूँ, मैं अभी मुक्त हूँ, मैं अभी बंधन रहित हूँ, मैं जीवन मुक्त हूँ, संसार से मुक्त हूँ, कर्म से मुक्त हूँ। जो कर्म करता है वो शरीर है, जो कर्म करता है वो मन है, जिसमें इच्छा है वो मन है, जो साक्षी है उसमें कोई इच्छा नहीं है, वो इच्छाओं का साक्षी है। यदि मैं वो हूँ तो मैं अभी मुक्त हूँ, इसी क्षण में मुक्त हूँ, कहीं जाना नहीं है क्योंकि मेरा कोई स्थान नहीं है, मुझे मुक्ति कहीं जाके नहीं मिलेगी, किसी और स्थान पर जाके नहीं मिलेगी, मेरा कोई स्थान नहीं है, इस स्थान पर आके मिलेगी। आप कह सकते हैं कि जब मैं अपने स्थान पर आ जाऊंगा जो कि यहाँ अभी है, मुक्त हो जाऊंगा। कोई गुरु आपको मुक्ति नहीं दिला सकता, गुरु बता सकता है कि तुम्हें कहाँ मुक्ति मिलेगी, किस स्थान पर मुक्ति मिले, वो स्थान अनुभव नहीं होगा, वो स्थान वो होगा जहाँ आप अभी है, यानी कि सर्वव्याप्त है या अलौकिक है, वो आपका स्थान है, वहां मुक्ति है, बहुत आसान है। जीवन मुक्त होना 5 मिनट का काम है, क्यों लोग भागते रहते हैं जीवन भर, किसी की समझ में नहीं आता। आपको आ सकता है समझ में, लेकिन जब आप मुक्त हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, जब आप देख लेंगे कि मैं कहाँ पे मुक्ति मिलती है, किस समय पे आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप ये समझ जाएंगे, यदि आपको इसका ज्ञान हो जाएगा, जो कि अभी आपको हो गया होगा, तो वहीं मुक्त हो जाएंगे आप, किसी गुरु की आवश्यकता भी नहीं। गुरु मुक्त नहीं कर सकता, गुरु आपको ये बता सकता है कि तुम बंधन में नहीं हो, इतना दिखा सकता है गुरु, देखो तुम ये अनुभव नहीं हो, जो बंधन में है वो नहीं है, नहीं हो, शरीर बंधन में है, मन बंधन में है, जिसको शरीर और मन का अनुभव हो रहा है उसको क्या बांध सकता है उसका वो स्वयं अस्तित्व है, अस्तित्व को बांधने के लिए आप कहाँ से दूसरा अस्तित्व लाएंगे। अनुभवकर्ता का जिसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, जो समय में नहीं है, समय के परे है, जो जो अलौकिक है, उसको आप कैसे बांध पाएंगे, किस नियम में बांध पाएंगे, जो कि सारे नियम स्वयं है, जो सारे बंधन स्वयं है, जो सारे बंधनों का अनुभव कर रहा है। तो ये बंधनों का भ्रम, बंधनों की भ्रांति, बंधन का की परिकल्पना, ये भी अस्तित्व का ही भाग है जो कि आप हैं। सिर्फ आपका जोड़ हो गया था उनके साथ, अहम ने उसको अपना मान लिया था, बंधनों को भी अपना मान लिया था, इसीलिए आप बंधन में बंध गए थे। अभी आपको पता चलेगा कि अब हमेशा से मुक्त थे यदि आप ये चित्त वृत्ति शांत कर दे कि मैं ये हूँ, वो हूँ, यहाँ बंधा हूँ, वहाँ बंधा हूँ, ये करना है, वो करना है, मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा। यदि आप अभी भी यही मानते हैं तो मुक्ति संभव नहीं है। ये आसक्ति, ये अपनापन, ये लगाव जो आपने बना रखा है शरीर और मन के साथ, उसको तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा आपको वो रस्सी, और अपनी स्थिति अनुभवकर्ता पर लानी पड़ेगी, अनुभवकर्ता पर स्थित होना पड़ेगा। वही आपका स्थान है, सर्वव्यापकता या अलौकिकता वो आपका स्थान है, नित्यता समय के परे वो आपका स्थान है, वहाँ बैठना पड़ेगा। हमेशा से मुक्त है, कुछ नहीं करना है। तो अगला प्रश्न मैं लेता हूँ अब, यदि अस्तित्व एक है और वही आत्मन है, वही मैं हूँ, तो ये बाकी लोग क्या है, ये दूसरे लोग क्या है, कि जो जो भी कहे, जो स्वयं कहते हैं, जो दावा करते हैं कि मैं भी अनुभव करता हूँ, तो बहुत सारे हो गए फिर, तो एक कैसा हो गया। तो इसका बहुत सरल उत्तर है कि अनुभवकर्ता के कई दृष्टिकोण हैं जो अलग अलग रूपों में स्वयं का अनुभव कर रहे हैं। देखना थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि आप दूसरों के चित्त में जाके अनुभव नहीं कर सकते, सारे अनुभव चित्त के द्वारा हो रहे हैं। तो चित्त विभिन्न है, चित्त भिन्न है, शरीर तो भिन्न है ही, आप देख सकते हैं, चित्त को नहीं देख सकते लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि ये चित्त मेरा नहीं है क्योंकि मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कभी। जो भी चित्त है वो प्रकट शरीर के माध्यम से ही होता है, किसी न किसी रूप के माध्यम से प्रकट होता है। यदि वो प्रकट नहीं होगा तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि चित्त है भी या नहीं। तो क्योंकि चित्त स्वयं अलौकिक है, चित्त का कोई स्थान नहीं है। बाकी लोग आपको दिखाई देते हैं, वो अनुभव मात्र है, वो लोग नहीं है, वो अनुभवकर्ता नहीं है। वो जिस अनुभवकर्ता की बात करते हैं वो भी मैं हूँ, वो अपने दृष्टिकोण से बात करते हैं, मैं अपने दृष्टिकोण से। यदि मैं चित्त पर स्थित हूँ तो आपको अलग अलग दिखाई देंगे सारे लोग, अलग अलग दिखाई देंगे सारे अनुभवकर्ता। आप कहेंगे यहाँ कमरे में 20 लोग हैं तो 20 साक्षी हैं, ये चित्त कह रहा है क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता है, वो 20 गिनती गिनता है, 20 शरीर है, 20 शरीर हैं, सही बात है, लेकिन अनुभव एक है, वो एक ही अनुभवकर्ता को हो रहा है। यही बात आप जो बैठे हैं लोग उनमें से किसी से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा, हाँ 20 शरीर है, अनुभव एक ही है, अनुभवकर्ता भी एक ही है। 20 के 20 आप पूछ सकते हैं सभी 20 लोगों को कि क्या उनका अनुभव है, वो सभी एक ही जवाब देंगे। ऐसा ही आप 20,000 के लिए कर सकते हैं, 20 करोड़ के लिए कर सकते हैं, सभी जीव जंतुओं के लिए कर सकते हैं, सबका एक ही जवाब आएगा कि रूप अलग अलग दिखाई देते हैं मुझे लेकिन अनुभव तो एक ही है, एक ही तरह का अनुभव हो रहा है मुझे, और अनुभवकर्ता भी एक ही है। आपको दो अनुभवकर्ता नहीं दिखाई देंगे, दो अनुभवकर्ता कभी नहीं दिखाई देंगे, दो साक्षी नहीं दिखाई देंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह आपको कभी दो आसमान नहीं दिखाई देंगे, आप आकाश की ओर देखेंगे और बताएं, पूछेंगे कितने आकाश हैं, सब आपको एक ही बताएंगे, एक ही आकाश है, सबको एक ही आकाश का अनुभव होगा, किसी भी स्थिति में हो रहा हो, किसी भी स्थान पर हो रहा हो। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग अनुभव है तो आकाश भी अलग अलग होगा, ऐसा नहीं होगा, एक ही आकाश का कई दृष्टिकोणों से अनुभव हो रहा है। इसी तरह एक ही आत्मन का, एक ही अस्तित्व का कई दृष्टिकोणों से अनुभव हो रहा है। आप पूछ के देख सकते हैं सबसे, ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव है, ये प्रमाण है आपके सामने। यदि आप दो अनुभवकर्ता ला सकें कहीं से पकड़ के तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी, क्योंकि वो अनुभवकर्ता नहीं रहेंगे, वो अनुभव बन जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो हैं, गिन सकते हैं कि दो है, तो वो अनुभवकर्ता की श्रेणी में नहीं आएंगे, वो अनुभव के वर्ग में आएंगे। अनुभव कितने भी हो सकते हैं, अनुभव की कोई गिनती नहीं है, अनंत है। इसी तरह से सारे जीव, सारे प्राणी, सारे मनुष्य, सारे जन भिन्न है, उनके पीछे जो अनुभव करता है वो एक है, वो एक ही अनुभव करता है, इन सभी रूपों में सभी दृष्टिकोणों से अनुभव ले रहा है। क्यों? क्योंकि सभी संभावना है अस्तित्व में, जरूरी नहीं कि एक ही शरीर और एक ही चित्त यहाँ हो, ऐसा जरूरी नहीं है, जितने चाहें उतने हो सकते हैं। उनकी कोई गिनती नहीं है, चला आ रहा है अस्तित्व के शुरुआत से, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, अनंत काल से चला आ रहा है, ऐसा खेल है। तो जो बाकी लोग हैं वो क्या हैं, वो अभी मैं ही हूँ। यदि आपका अहम शरीर पर स्थित है तो बाकी लोग हैं, बाकी लोग भी शरीर हैं, मेरे से भिन्न है, ये आदमी है, ये औरत है, ये बच्चा है, ये इस देश का है, उस जाति का है, ये ऐसा दिखता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, बूढ़ा है, जवान है। यदि आपका अहम शरीर पर स्थित है तो आपको सभी लोग ऐसे ही दिखाई देंगे, भिन्न दिखाई देंगे। ये सारा झगड़ा इसी बात का है, आप देखें तो क्योंकि अज्ञान है कि मैं शरीर हूँ, तो बाकी लोग भी शरीर दिखाई देते हैं और आप उनको शरीर की तरह ही प्रयोग में लाते हैं, शरीर की तरह ही आप उनसे व्यवहार करते हैं, आपके संबंध शरीर के संबंध हो जाते हैं। या तो अच्छा लगता है या तो बुरा लगता है, या तो आप साथ रहना चाहते हैं या तो मारना काटना चाहते हैं। 99% से ज़्यादा लोगों की ये स्थिति है अभी। यदि आप मानसिक तरह के हैं थोड़े से, तो आपका अहम मन पर स्थित है और शरीर से आप कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये इस तरह का आदमी है, ये इस तरह का इसका व्यवहार है, ये इस तरह का उसका चरित्र है, भिन्न है। शरीर जैसा वैसा ही है जैसा मेरा है, लेकिन चरित्र भिन्न है, उसके विचार भिन्न है। वो ये काम करता है, वो इस व्यवसाय में है, मैं ऐसा हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये नाम है, उसके वो रिश्तेदार हैं, मेरे ये रिश्तेदार हैं, मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का है, उस देश का है, वो बाहर देश का है, मैं नहीं हूँ वो। ये तब होगा जब आपका अहंकार की स्थिति मन पर होगी, जब आपको शरीर से लेना देना नहीं होगा, लेकिन मानसिक संबंध होंगे आपके बाकी जनों के साथ। और यदि आपका अहंकार जो है नष्ट हो चुका है और सिर्फ आत्मन बचा है, आपको आत्म साक्षात्कार हो गया है, तो आप देखेंगे कि मैं ही सारे जन हूँ, सिर्फ दृष्टिकोण भिन्न है, सभी मैं ही हूँ, सभी जीव मैं ही हूँ, सभी मनुष्य, सभी मानव मैं ही हूँ, सारी मानव जाति मैं ही हूँ, बस मैंने रूप ले रखे हैं तरह तरह के, जिनके माध्यम से मैं तरह तरह के अनुभव कर रहा हूँ, यही मेरा खेल है, यही मेरी लीला है। तो आप देखें कितना महत्वपूर्ण है अहम का सही जगह पर रहना। अहम जो है नीचे तक जा सकता है, जहाँ पे आपका जीवन नरक हो सकता है, जो कि बहुत लोग आए, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है अहम कहाँ पे रखना है, अहंकार का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह अहम को ही मैं मान बैठे हैं, अहम को ही आत्मन मान बैठे हैं। बहुत से लोग कहेंगे सारे अनुभव शरीर को हो रहे हैं, तो फिर शरीर का अनुभव किसे हो रहा है? बहुत से लोग जो पढ़े लिखे होते हैं कहेंगे मस्तिष्क में मेरे अनुभव हो रहे हैं, तो मस्तिष्क का अनुभव किसे हो रहा है? वो कहेंगे प्रक्रिया चल रही है मेरे मस्तिष्क में, जिसकी वजह से अनुभव हो रहे हैं, तो उस प्रक्रिया का अनुभव किसे हो रहा है? हम देखेंगे अनुभव करता हमेशा पीछे हट जाता है दो कदम, वो पृष्ठभूमि हो जाता है, वो शून्यता हो जाता है, उसे अनुभव हो रहे हैं, इसीलिए उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए बुद्धि के बाहर है वो, इसीलिए ज्ञान के बाहर है, ज्ञान के परे है, इसीलिए अलौकिक है, इसीलिए नित्य है वो, समय के परे है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आ गया होगा कि बाकी लोग क्या है। मैं भी मैं हूँ और आप भी मैं हूँ, तुम भी मैं ही हूँ, कोई भेद नहीं है दोनों में। इसका नाम है प्रेम। तो जो आत्मन है प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का अर्थ है भेद नहीं होना, दो नहीं होना। ये संबंध एक मनुष्य का दूसरे के साथ है कि न शरीर एक है, न मन एक है, लेकिन आत्मा एक है, एक ही है। आप कितने भी प्रमाण ढूंढने जाए आपको दो नहीं मिलेंगे। और यदि आपका अहम नष्ट हो चुका है, आपका सिर्फ आत्मन बचा है अभी, आपका जो देखने का कोण जो है, दृष्टिकोण आपका आत्मन के द्वारा है, तो आपको कोई भी दूसरा मनुष्य दूसरा नहीं दिखाई देगा, अपने से भिन्न नहीं दिखाई देगा, सब लोग आपको अपने ही रूप दिखाई देंगे। तो इसमें भी 5 मिनट लगते हैं देखने में, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वहाँ रहना कठिन है, उसमें प्रयास लगता है, उसमें साधना लगती है, क्योंकि चित्त आपको बार बार नीचे ले जाएगा, चित्त आपको बार बार नीचे गिराएगा, बार बार कहेगा कि हाँ वो दूसरे हैं, वो मैं नहीं हूँ। तो ये इसके लिए साधना करनी पड़ती है, बार बार स्मरण करना पड़ता है, अहंकार को मिटा के आत्मन को बिठाना पड़ता है अपनी सही जगह पे। तो मेरा दूसरों से क्या संबंध है? ये जो सारे संबंध आपने बना रखे हैं, दोस्ती दुश्मनी के और मेरे तुम्हारे और उसके अपने पराए, सारे मिथ्या हैं, सारे असत्य हैं, सारे बनावटी हैं, आने जाने हैं, स्मृति पर निर्भर है। स्मृति आपकी मिटा दी जाए तो सारे संबंध मिट जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा आपको कौन कौन है। आपने देखा होगा फिल्मों में ऐसा होता है, कई कई बार हीरो की स्मृति चली जाती है, उसको पहचानने से इनकार कर देता है कि मेरी पत्नी कौन है और मेरी माँ कौन है। स्मृति भर के संबंध है, स्मृति यानी कि चित्त। स्मृति चित्त का भाग है, बनावटी संबंध है। जब जब शरीर आता है जगत में और संबंध बनाना शुरू कर देता है, शरीर के संबंध है, खून के रक्त के संबंध है जो कि बनावटी है। शरीर जाता है वो भी चले जाते हैं, स्मृति रह जाती है, स्मृति गई वो भी गया। आपका जब जन्म होगा अगली बार कोई स्मृति नहीं रहेगी, सारे संबंध टूट जाते हैं। आपको इतना भी इतने देर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप हर रात को सोते हैं जब गहरी नींद में होते हैं, स्मृति उस समय चित्त वृत्ति बंद होती है, उस समय कौन सा संबंध होता है? कोई संबंध नहीं होता किसी से, सब टूट जाते हैं। जैसे ही सुबह उठते हैं तो चित्त वृत्ति शुरू होती है, उठना और वृत्ति का शुरू होना एक ही चीज़ है, और आपके संबंध धीरे धीरे स्मृति से बाहर आते हैं, जो विस्मृत हो गया था वो वापस प्रकट होता है, और आपका आप जागृत अवस्था शुरू होती है, आपका दैनिक जीवन संसार का चक्र शुरू होता है। ऐसा रोज होता है, हर रात होता है। बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं मरूंगा तो मेरे संबंध टूटेंगे, नहीं, रोज टूटते हैं, रोज बनते हैं, परिवर्तनीय है, बनते टूटते रहते हैं। आपने देखा होगा स्मृति भर है, वो बदलती रहती है। कभी किसी ने कह दिया कि हाँ मुझे तुमसे प्रेम है, स्मृति में छाप छोड़ जाता है और आपको लगता है अभी मेरा ये संबंध है, अगले दिन वही कहता है कि नहीं अब मुझे तुमसे प्रेम नहीं, मुझे किसी और से प्रेम है, मुझे तुमसे नफरत है, घृणा है, संबंध टूट जाता है, उसकी भी छाप स्मृति में छप जाती है। तो ये प्रक्रिया है, ये संबंध चित्त बनाता है या प्रकृति बनाती है, आपकी रक्त के संबंध जो कि आपको कोई बता है नहीं, तो आप बता नहीं पाएंगे कि मेरे किसी मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, मेरा भाई कौन है, ये कौन है, वो कौन है, नहीं बता पाएंगे आप। शक्ल मिलती जुलती होगी तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हो सकता है कि ये हो, लेकिन आपको बताया जाता है बचपन से कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे देश के लोग हैं, ये मेरी जाति के लोग हैं, इनसे प्रेम से रहना, बाकी लोगों को मारना, ये आपको सिखाया जाता है, ये आपके संस्कार दिए जाते हैं, समाज आपको देता है। आपका कुछ भी नहीं है इसमें, सब बनावटी है। आप कहाँ पैदा होते हैं उस बात पे निर्भर है। जो सत्य का संबंध है वो प्रेम का है, वो एकता का संबंध है। ये सारे संबंध नहीं है, ये आने जाने हैं, ये असत्य है, ये मिथ्या है, ये माया है। ये सारे संबंध जो आपने बना रखे हैं, जो सही संबंध है वो एकता का है। मैं एक हूँ, एक रूप हूँ, एक समान हूँ बाकी सबके साथ। जब ऐसा संबंध हो जाता है तो आपको किसी और संबंध की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो आपने काल्पनिक संबंध बना रखे हैं और जो मैं सतही तरह के हैं, जो जरा से धक्के से गिर जाते हैं, बड़ा दुख होता है कुछ लोगों को बहुत खुशी भी होती है जब नए संबंध बनते हैं, तो बड़े खुश होते हैं, सातवें आसमान पे होते हैं, जब टूटते हैं तो गिरते हैं बेचारे धरती पे, चोट लगती है। तो ये सब चित्त वृत्ति है, क्योंकि उन्होंने मान रखा है कि मैं चित्त हूँ। यह अहंकारिक संबंध है, बनावटी है, काल्पनिक है। जो सही संबंध है वो ये है कि मैं और आप एक ही हूँ, एक रूप है। ये समझना बहुत आसान है, 5 मिनट लगते हैं, यहाँ रहना आपके लिए कठिन रहेगा, रहने के लिए साधना लगेगी। बार बार आप जब भी आपका मन कहे कि नहीं बाकी लोग दूसरे हैं, मेरे शत्रु हैं, मुझे उनको मारना है, या ये मेरे परिवार के लोग हैं, इनकी मेरे को रक्षा करनी है, तो आपको हमेशा एक ही बात मन में लानी पड़ेगी कि नहीं सभी लोग एक ही हैं, वो मैं ही हूँ, जो भी हूँ, उनमें भेद जो है छूट जाना चाहिए। तो बड़ा प्रश्न आता है कि फिर इस संसार का क्या होगा, फिर यदि मैं परिवार की रक्षा नहीं करूँगा, उनको खाना पीना नहीं दूंगा, या जो मेरे शत्रु हैं मेरे को मारने आते हैं, उनको मैं मारूंगा नहीं या उनसे बचूंगा नहीं, तो ये जीवन कैसे चलेगा? तो भैया जीवन सारा जो है वो मिथ्या है, वो मिथ्या के बल पे ही चल रहा है, वो हवा में चल रहा है सारा जीवन। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, मनुष्य जीवन से मुक्ति। जब तक चल रहा है उसे चलने दो, किसी तरह से धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाओ। वहां आप ठीक करने जाओगे तो कुछ ठीक नहीं होगा, असत्य में क्या ठीक होगा, असत्य सत्य कैसे बनेगा, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सांसारिक बातों में कैसे उपयोग में लाओगे, उसे क्या उपयोग है संसार में आध्यात्मिक ज्ञान का? आध्यात्मिक ज्ञान का लक्ष्य है कि आपको संसार से निकाल दे, संसार के ऊपर पहुंचा दे, संसार से मुक्त कर दे। ज्ञान होने में, मुक्ति होने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन क्योंकि चित्त फंसा है संसार में, उसको समय लगता है, वो समय में है बेचारा, समय में जी रहा है। कुछ लोगों को समय भी नहीं लगता, वो इतना उनका ज्ञान इतना शक्तिशाली होता है कि तुरंत उनकी मुक्ति हो जाती है, विधेय हो जाते हैं वो, उनके देह से संबंध टूट जाता है। हमें लगता है वो मर गया बेचारा, हमें लगता है उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो मुक्त हो गया, अब उसका कभी जन्म नहीं होगा। लेकिन वो काफ़ी कम होता है, बहुत कम देखा गया है। शरीर से छुट्टी जल्दी नहीं होती, मन से छुट्टी में और समय लगता है, कई जन्म लगते हैं। तो यदि आप ये स्मरण हमेशा रखते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरा बाकी लोगों से क्या संबंध है, शरीर से क्या संबंध है, संसार से क्या संबंध है, कैसे ये मिथ्या है, कैसे ये माया है, तो आपकी मुक्ति जल्दी हो जाएगी, जो कि चित्त की मुक्ति होगी। आपकी तो हमेशा से मुक्त हैं, मैं तो हमेशा से मुक्त हूँ। चित्त वृत्ति चल रही है जब तक, तब तक योग नहीं होगा, वो समय में होगा, उसके लिए साधना होती है। मुक्त होने के लिए कोई साधना नहीं होती। सुन के आपको आश्चर्यचकित हुए होंगे कि इतना आसान है, कि इतना आसान कैसे है। तो ज्ञान मार्ग सीधा आसान है, ज्ञान मार्ग पे आप आ गए तो बहुत आसान हो जाता है। जब तक कि वो आपके लिए एकदम ठोस नहीं हो जाता, निश्चित नहीं हो जाते आप, तब तक उस पर मनन करते रहिए, उस पर ध्यान करते रहिए, उसको स्पष्ट कर लेना चाहिए। मेरे मन में ये शंका है, यदि आपने नहीं पूछा, यदि कोई बताने वाला है, आपका गुरु भी है और आपने नहीं पूछा, मान भर लिया कि ये सब बकवास है, मैं तो शरीर हूँ या मैं तो मन हूँ या ऐसा है वैसा है, तो वहीं आपकी प्रगति रुक जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप वैसे हो जाएंगे, या जो अनुभवकर्ता है वो शरीर में बदल जाएगा और आपको वापस उसको बदलना पड़ेगा अनुभवकर्ता में, ऐसा नहीं है। आपके मानने न मानने से कुछ भी नहीं होता, सत्य सत्य होता है, सिर्फ ज्ञान या अज्ञान होता है। या तो मान्यता रहेगी या मान्यता का अभाव रहेगा चित्त में, या तो चित्त की वृत्ति रहेगी, माया रहेगी, या तो नहीं रहेगी। इससे अधिक कुछ नहीं होता, इससे अधिक कुछ नहीं करना है आपको। साधना सरल है, लेकिन उस पर लगे रहना पड़ता है आपको, छोड़ना नहीं है, वो हार नहीं माननी है आपको, चित्त जो कहे, क्योंकि उस पर बहुत संस्कारों का बहुत बड़ा भार है, हजारों हजारों साल के संस्कार, हजारों जन्मों के संस्कार उस पर है, वो एक दिन में इधर नहीं आएगा। वो जो मन में जो परिकल्पनाएं भरी हैं, धारणाएं भरी हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा के देखें, प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभव से सत्य क्या है, अपना सत्य का मानदंड बनाएं, एक बहुत बहुत अच्छा ठोस मानदंड बनाएं, और देखिए आपके लिए क्या उपयोगी है, मुक्ति के लिए क्या उपयोगी है। यदि आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए कौन सा मानदंड उपयोगी है, और आपकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप पहले कुछ थे अब कुछ और हो गए, ये अर्थ नहीं है। सिर्फ जो अज्ञान है कि मैं बंधन में था, वो अज्ञान नष्ट हो जाएगा, सिर्फ इतना होगा, क्योंकि आप कभी बंधन में नहीं थे, तो आपको मुक्त करना असंभव है। मुक्ति उसी की हो सकती है जो बंधन में रहा हो, जो कभी बंधन में नहीं रहा उसी क्या मुक्ति होगी। तो सिर्फ अज्ञान नष्ट होता है कि मैं मुक्त नहीं हूँ, ज्ञान मार्ग पर ऐसा हो, आपको यही एक चित्र दिखेगा हमेशा, यही बात बार बार आपके सामने आएगी कि आप जो थे वो रहेंगे हमेशा, सिर्फ अज्ञान नष्ट होता रहेगा, आपने जो मान रखा था उसका विनाश होता रहेगा। काफी विनाशकारी मार्ग है, इसलिए मैंने कहा हर किसी के बस की बात नहीं है छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं है ज्ञान मार्ग, जो डर जाते हैं जल्दी उनके लिए नहीं है, निडर और साहसी व्यक्तित्व चाहिए रहेगा, उसके लिए बुद्धि चाहिए रहेगी। आप देखेंगे बुद्धि का उपयोग करने जाएंगे तो कुछ हाथ नहीं आता, लेकिन उसके लिए भी बुद्धि चाहिए रहेगी, ये समझने के लिए कि ये बुद्धि के परे है। जब तक बुद्धि नहीं होगी आप क्या है? कैसे जानेंगे बुद्धि के परे क्या है, बुद्धि में क्या है, वो जानना आवश्यक है पहले। तो ज्ञान मार्ग पे हम चित्त का उपयोग चित्त के परे जाने के लिए करते हैं, बुद्धि का उपयोग बुद्ध होने के लिए करते हैं। बहुत विलक्षण मार्ग है।
आप सुन रहे थे बोधि वार्ता तरुण प्रधान के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस श्रृंखला के अगले भाग में। नमस्कार।